कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से योएल नबी की पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओं, अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु,
जय मृत्युंजय जय का सृजन हा, पालन हा, तारण।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से योएल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि योएल के युग में टिड्डियों का आक्रमण हुआ जो ऐसा भयानक था कि उनके प्राचीनों ने ऐसा प्रकोप कभी भी पहले नहीं देखा था। योएल उनसे कहता है कि वे अपने बच्चों से इसकी चर्चा किया करें और उनके बच्चे अपने बच्चों को सुनाएं। टिड्डियों का ऐसा भयानक आक्रमण न तो वहां पहले कभी हुआ था और योएल कहता है कि आगे भी नहीं होगा। हमने इन बातों को देखा था। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और पवित्र समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया है, ताकि हम आपके सामर्थी और जीवित वचन का अध्ययन कर सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका वचन दोधारी तलवार से भी तीखा और तेज है, जो शरीर के अंग अंग और गुदी गुदी को छेदता है। पिताजी, आज जब हम आपके वचन में से फिर से आगे बढ़ना चाहते हैं, सुनना और सीखना चाहते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब हम योएल नबी की पुस्तक की उन भविष्यवाणी की बातों को सुनते हैं, सीखते हैं, तो हम समझ सकें, अपने जीवन में ग्रहण करने पाएं और उसके अनुसार चलने पाएं। हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, शैतान के हर एक छल प्रपंच से आप प्रत्येक की रक्षा करें। इस घड़ी हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो इस समय बीमार अवस्था में है, निराश है, परेशान है, चिंताओं में है, तनाव और दबाव में है, अपने जीवन को समाप्त करने की इच्छा बना रहे हैं। आप उन पर दया दृष्टि करें, उनके जीवन को स्पर्श करें, ताकि प्रत्येक जीवन जो आपकी दृष्टि में कीमती है बचाया जाए। आज अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करें, मुझसे बातचीत करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हमने देखा है कि टिड्डियों के विषय में जानकारी हमें पहले अध्याय उसके 1-3 पद में मिल चुका है। अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और पद 4 पर ध्यान लगाएंगे। तो आइए आप मेरे साथ योएल की पुस्तक 1 अध्याय उसके 4 पद को निकाल लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया, जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे येलेक नामक टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ येलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया है। मेरे प्रियो, यहाँ पर 4 परजीवियों के नाम आए हैं, गाजाम टिड्डी, अरबे टिड्डी, येलेक टिड्डी, हासिल टिड्डी। अब कोई कहे कि ये 4 प्रकार के कीट हैं तो इसका कोई प्रमाण नहीं है। गाजाम का अर्थ है दांतों से काटना। अरबे शब्द से प्रकट होता है कि ये टिड्डियां यथावर थी, वे बड़े झुंड में चलती थी। येलेक का अर्थ है चाटना। हासिल का अर्थ है चट कर जाना। ये सब शब्द टिड्डियों के गुण हैं और वे सेना के समान चलती हैं। सेना में पहले हवाई हमले में बम गिराए जाते थे, इसके बाद थल सेना आगे बढ़ती है और विनाश करती है, इसके बाद पैदल सैनिक आते हैं, वे बचा हुआ विनाश ढा देते हैं। इसके बाद एक और टुकड़ी आती है जो शत्रु का पूर्ण सफाया करके वहां पर कब्जा कर लेती है। इस प्रकार टिड्डियों की सेना के 4 वर्गों का वर्णन किया गया है। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि उनका सेनापति या राजा नहीं होता है, फिर भी वे अनुशासन में चलती हैं। मेरे प्रियो, टिड्डियां सामान्यतः परमेश्वर के दंड का प्रतीक है, परंतु यहां हम इसे प्राकृतिक आपदा मानकर चलेंगे। मेरे विचार में यह परमेश्वर का दंड नहीं, एक चेतावनी थी। योएल लिखने वाला पहला भविष्यद्वक्ता था जो एलिया का समकालीन था। एलिया उत्तरी राज्य को चेतावनी दे रहा था और योएल बड़े नाटकीय तरीके से यहूदा अर्थात दक्षिणी राज्य को चेतावनी दे रहा था कि परमेश्वर का दंड आने वाला है। वह स्थानीय परिस्थितियों से चलकर भविष्य की ओर चलता है। यह सभी भविष्यद्वक्ताओं का गुण था। वह प्रभु के दिन आने वाले दंड की चर्चा करता है। मेरे प्रिय मित्रों, धर्मशास्त्र में यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है, परंतु सबसे अधिक गलत समझा जाता है। यद्यपि योएल इस अभिव्यक्ति को काम में लेने वाला पहला भविष्यद्वक्ता है, वह स्पष्ट व्यक्त करता है कि प्रभु का दिन क्या है। उसके बाद सब भविष्यद्वक्ताओं ने इस दिन को वह दिन कहा है और स्पष्ट भी किया कि उनके कहने का अर्थ क्या है। सुनने वाले समझ भी पाए थे कि वे क्या कहते थे। मैं कुछ आगे बढ़ रहा हूं, परंतु कहना चाहता हूं कि योएल टिड्डियों के दृश्य से हटकर प्रभु के दिन की चर्चा करेगा जो महाक्लेश के साथ आरंभ होगा। महाक्लेश का आरंभ कैसे होगा? उसका आरंभ प्रकाशित वाक्य के 4 घुड़सवारों से होता है। पहले तो झूठी शांति दिखाई देती है, तदुपरांत युद्ध छिड़ जाता है, जिसके बाद अकाल पड़ता है, अंत में मृत्यु का पीला घोड़ा आता है और महाक्लेश के समय टिड्डियां नहीं, कहीं अधिक भयानक घटना घटेगी और इसराइल में ही नहीं संपूर्ण विश्व में घटेगी। जब प्रभु यीशु अपना राज्य स्थापित करने इस पृथ्वी पर आएगा, तब संसार लगभग नष्ट हो चुकी होगी। योएल नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, हे मतवालों जाग उठो और रो, और हे सब दाख मधु पीने वालों नए दाख मधु के लिए हाय हाय करो, क्योंकि वह तुमको अब ना मिलेगा। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, टिड्डियों ने पहले दाख पर आक्रमण किया और दाख की बारियों को नष्ट कर दिया। अब शराबियों के लिए दाख मधु नहीं होगा। उस युग का शराबी अब उपचार करवाने लगा था क्योंकि उसे पीने के लिए दाख मधु नहीं मिल रहा था। इससे प्रकट होता है कि इसराइल के पतन से पूर्व वहां शराब पीने का पाप था। आज भी हम देखते हैं कि स्वतंत्रता का दुरुपयोग और शराब पीने के वैधानिक अधिकार के कारण सड़कों पर दुर्घटनाएं घटती हैं। मित्रों, आप मुझे दोष देंगे, परंतु मैं वही कहता हूं जो परमेश्वर का वचन शराब के बारे में कहता है। जब परमेश्वर का वचन राजा के शराब पीने की चर्चा करता है, तब भी मैं देश के राजधानी में शराब की लत के विषय में चर्चा करूंगा। जी हां, आज हमारे समाज में शराब की पार्टियों का चलन है, और कुछ निर्णयों से प्रतीत होता है कि वे संतुलित मानसिक अवस्था में नहीं लिए गए हैं। लिखा है, हे मतवालों जाग उठो और रो, और हे सब दाख मधु पीने वालों नए दाख मधु के लिए हाय हाय करो। आरंभ ही में शराब इस्राएल राष्ट्र की नींव हिलाने लगी थी। जी हां, योएल केवल इसी पाप का उल्लेख करता है, वह मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं करता, जिस महापाप के कारण इस्राएल का पतन हुआ था। इस समय इसराइली अब भी परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, चाहे वह दिखावा ही क्यों ना हो। योएल नबी की पुस्तक 1 अध्याय के 6 पद में लिखा है, देखो मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है, वह सामर्थी है और उसके लोग अनगिनत हैं। उसके दांत सिंह के से और ढाणें सिंहनी की सी है। यहां टिड्डियों की तुलना एक आक्रमणकारी सेना और उसके विनाश से की जा रही है। ये छोटी टिड्डियां एक पेड़ को पूरी तरह नष्ट कर सकती हैं। वे गेहूं के खेत को उजाड़ सकती हैं। वे 4 जत्थों में आई और उनका कोई राजा नहीं था। वे प्रायः परमेश्वर के दंड स्वरूप आती थी, परंतु इस समय उनका आना एक प्राकृतिक आपदा था। आगे चलकर योएल दूर भविष्य की चर्चा भी करेगा। वह प्रभु का दिन होगा जो टिड्डियों के आक्रमण स्वरूप पृथ्वी पर विनाश ढाएगा। प्रकाशित वाक्य के 4 घुड़सवारों का आना भी हम देखेंगे। योएल नबी की पुस्तक 1 अध्याय के 7 पद में आगे लिखा है, उसने मेरी दाखलता को उजाड़ दिया और मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला है। उसने उसकी सब छाल छीलकर उसे गिरा दिया है, और उसकी डालियां छीलने से सफेद हो गई हैं। मेरे प्रियो, उन्होंने अंजीर के पेड़ों को पूरा खा डाला था, यहां तक कि उसकी छाल भी नहीं बची थी। योएल प्रजा को संदेश सुना रहा था और उपाय भी सुझा रहा था कि वे क्या करें। वह उन्हें 10 बातों को समझाएगा। योएल नबी की पुस्तक 1 अध्याय के 8 पद में हम पढ़ते हैं, जैसे युवती अपने पति के लिए कटी में टाट बांधे हुए विलाप करती है, वैसे ही तुम भी विलाप करो। वह एक असामान्य बात करता है। पहला, उन्हें विलाप करना है जैसे एक नवविवाहित युवती अपने पति के लिए विलाप करती है, क्योंकि वह युद्ध में मारा गया है। तब हम आगे देखते हैं, योएल नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, यहोवा के भवन में न तो अन्न बलि और न अर्घ आता है, उसके टहलुए जो याजक हैं वे विलाप कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहोवा के भवन में न तो अन्न बलि और न अर्घ आता है, अर्थात उनके पास अन्न बलि का सामान नहीं है। तो दूसरी बात हम देखते हैं कि उसके टहलुए जो याजक हैं विलाप कर रहे हैं। इस संपूर्ण अंश में यही कहा जा रहा है, शराबी विलाप कर रहे थे और याजक भी विलाप कर रहे थे। इस विपत्ति के कारण देश की आर्थिक व्यवस्था डगमगा गई थी। इन पदों से और अन्य कुछ पदों से प्रकट होता है कि योएल यरूशलेम में था। यहां वह याजकों को संबोधित कर रहा है, वे परमेश्वर के भवन में सेवा करते थे। तब वह कहता है योएल नबी की पुस्तक 1:10 में, खेती मारी गई, भूमि विलाप करती है, क्योंकि अन्न नष्ट हो गया, नया दाख मधु सूख गया, तेल भी सूख गया है। वहां ना तो जैतून का तेल था, ना दाख थी और ना गेहूं था। उनकी तीनों मुख्य फसलें नष्ट हो गई थी। संपूर्ण भूमि को भी विलाप करना था। देखिए, इसराइल में निवासी एवं भूमि परस्पर जुड़े हुए थे। मूसा की व्यवस्था मनुष्यों के लिए ही नहीं भूमि के लिए भी बनाई गई थी। योएल ने शराबियों को संबोधित किया, याजकों को संबोधित किया और अब वह किसानों को भी संबोधित करता है। योएल नबी की पुस्तक 1:11-12 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे किसानों लज्जित हो, हे दाख की बारी के मालियों, गेहूं और जौ के लिए हाय हाय करो, क्योंकि खेती मारी गई है, दाख लता सूख गई और अंजीर का वृक्ष कुमला गया है, अनार ताड़ सेव वरन मैदान का सब वृक्ष सूख गए हैं और मनुष्यों का हर्ष जाता रहा है। तीसरी बात हम देखते हैं, हे किसानों लज्जित हो, और चौथी बात, हे दाख की बारी के मालियों हाय हाय करो। दाख की बारी के माली अर्थात उसके स्वामी। सेव वास्तव में संतरे का पेड़ है जो वहां का मूल पेड़ है। योएल नबी की पुस्तक 1:13 में लिखा है, हे याजकों कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट के रो, हे वेदी के टहलुओं हाय हाय करो, हे मेरे परमेश्वर के टहलुओं आओ टाट ओढ़े हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्न बलि और अर्घ अब नहीं आते। पांचवी बात हम देखते हैं, कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट कर रो, और तब छठवीं बात, हे वेदी के टहलुओं हाय हाय करो। याजक अपना काम नहीं कर रहे थे क्योंकि भेंट के लिए सामग्री उपलब्ध नहीं थे। उन्हें कमर में टाट बांधकर दुखी रहना था क्योंकि न तो अन्न था और न ही अर्घ के लिए दाखरस था। देश की अर्थव्यवस्था ऐसी बिगड़ी थी कि मंदिर में भेंट चढ़ाने के लिए भी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी। अतः परमेश्वर कहता है कि भेंट से बढ़कर मनुष्य का मन उसे ग्रहण योग्य होना है। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर उनसे वह काम करने को कहता है जो उसने पहले कभी नहीं कहा। मूसा की व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें 7 पर्व दिए थे। उसने स्पष्ट कहा था कि वे मुंह लटकाए उसके सामने ना आए। वह चाहता था कि इसराइल हर्षित मन से आनंद करता हुआ उसके भवन में आए। आज देखा जाता है कि आराधकों का उपासना में आना आनंद का कारण नहीं है। मैं हास्य कथाएं सुनाना चाहता हूं और कई बार सुनाता भी हूं तो आपत्ति की जाती है। मैं देखता हूं कि कुछ पवित्र जन सुनकर मुस्कुराते भी नहीं हैं। आज आनंद नहीं दिखता और योएल के युग में भी आनंद नहीं था। मेरे प्रियो, परमेश्वर पहली बार कहता है कि यहूदा वासी विलाप करें, टाट ओढ़कर राख मलें। क्यों? इससे पहले तो वह कहता था, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे समक्ष आनंद करते हुए आओ। इसका कारण है देश में पाप। आज भी आनंद के कमी का कारण है पाप। निसंदेह संसार परिश्रम कर रहा है। आज संगीत को ऊंचे स्वर में होना है और गंदे चुटकुले होना है कि आराधक खुश हों। हमारी कलीसियाओं में जोर से हंसना पाप माना जाता है। मेरे मित्रों, हमारा आनंद आज कहां गया? पाप के कारण आनंद समाप्त हो गया है। परमेश्वर कहता है कि मेरे सामने विलाप करो, मुझे यह अच्छा तो नहीं लगता, परंतु तुम पापी हो और मैं पश्चाताप देखना चाहता हूं। यही परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को जांच लें, देख लें कि हम पापी हैं और हमें पश्चाताप की आवश्यकता है। याकूब की पत्री 1:14 में लिखा है, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। 7वीं बात हम देखते हैं, उपवास का दिन ठहराओ। परमेश्वर ने पहले कभी ऐसा नहीं कहा था। परमेश्वर ने उन्हें आनंद के पर्व दिए थे, उपवास का पर्व नहीं दिया था, परंतु अब उनके पाप के कारण परमेश्वर को यह कहना पड़ रहा था। मेरे प्रियो, योएल केवल एक ही पाप का उल्लेख करता है जो देश को नष्ट कर रहा था, शराब की लत का पाप। शराब के नशे में वे अविवेकी होकर गलत निर्णय ले रहे थे, उनकी बुद्धि काम नहीं करती थी। आज परिवार नष्ट हो रहे हैं, हमारा देश नष्ट हो रहा है, कलीसियाएं नष्ट हो रही है। उसका कारण है कि बहुत सारे परिवार में, बहुत सारे लोगों के जीवन में शराब की लत है। 8वीं बात हम देखते हैं, महासभा का प्रचार करो, अर्थात एकत्र हो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वे एकत्र होकर आनंद करें, उसकी उपस्थिति में आए। परंतु अब वह कहता है कि उनका एकत्र होना मन फिराव का कारण हो। और 9वीं बात हम देखते हैं, पुरनियों को एकत्र करो, सब नागरिकों को परमेश्वर के समक्ष एकत्र करो, आराधना में आने का समय। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि दो मित्र थे जो अलग अलग क्लब में जाते थे और वे उसके सदस्य थे, परंतु आराधना में उनकी परस्पर भेंट होती थी। एक ने कहा, मुझे नहीं मालूम था कि आप आराधना में आते हैं। दूसरे ने उत्तर दिया, मैं प्रायः आराधना में नहीं आता हूं, यह पहला अवसर है कि मैं आया हूं, परंतु मेरा बेटा युद्ध में गया हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि मेरा आराधना में आना उचित होगा। मेरे मित्रों, परेशानियों के कारण हम आराधना में आने के लिए विवश हो जाते हैं। अतः यहूदा वासियों को उपवास के लिए एकत्र होना था। और अब हम 10वीं बात देखते हैं कि उसकी दुहाई दो, क्योंकि परमेश्वर दयावान है, हमारा परमेश्वर महान है। उन्हें इस अनर्थ के समय परमेश्वर के समक्ष आना था, वह उनकी प्रार्थना सुनेगा और उत्तर भी देगा। मेरे मित्रों, योएल ने उन्हें चेतावनी दी और ये निर्देश भी दिए, यदि उन्हें परमेश्वर से आशीषें चाहिए तो उन्हें ऐसा ही करना होगा। आज यह चेतावनी हम सब के लिए भी है। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो ध्यान दें कि यह चेतावनी हमारे लिए भी है कि हम परमेश्वर के पास आएं, पश्चाताप करें, उसकी दुहाई दें, ताकि हमारे जीवन में आशीष आ जाए, हम नाश होने से बच जाएं। मेरे मित्रों, मेरे जवान भाइयों और मेरे पिताओं, मैं नहीं जानता कि इस समय आपका जीवन क्या है। हो सकता है कि आप भी शराब के आदि हैं और शराब आपके परिवार को, आपके जीवन को नाश कर रही है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इससे बचाए? यदि हाँ, तो परमेश्वर आपको बचा सकता है। बस आप एक काम कीजिए कि अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और प्रभु के पास लौट आइए, उससे कहिए, हे प्रभु, मैं इससे बचना चाहता हूं। मेरे मित्र, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए और निश्चय जानिए कि परमेश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। आप मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं। मैं शराब की लत में पड़ गया हूं। मैं छोड़ना चाहता हूं परंतु नहीं छोड़ पा रहा हूं। आप मेरी सहायता कीजिए। मेरे पापों को आप क्षमा कर दीजिए। मुझे नया व्यक्ति बना दीजिए ताकि मैं अपने परिवार के लिए, कलीसिया के लिए एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता, एक अच्छा भाई बन सकूं। आप मेरी सहायता करें। प्रभु यीशु, आप मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन का संचालन आप करें। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, क्योंकि आप मुझे छू रहे हैं, मेरे पापों को क्षमा कर रहे हैं, मुझे छुटकारा दे रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपकी स्तुति करता हूं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। मेरे मित्रों, मुझे आशा है कि आज के इस दिन आपने अपने जीवन में एक नया अनुभव प्राप्त किया है। प्रभु अवश्य आपकी सहायता करेंगे। यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
दुख से भरे ये दिन मसीह है हम।